नमस्कार प्रिय श्रोताओ, कार्यक्रम सत्य वचन में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उम्मीद है कि आप भी आज का कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से दानियल नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं, जिसका मुख्य विषय है राज्यों का उत्थान एवं पतन। तो आइए आज के बाइबल अध्ययन को शुरू करने से पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
तैयारी हम करें वहां जाने के लिए, तैयारी हम करें वहां जाने के लिए।
यीशु जल्द आता है हमको लेने के लिए।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे आशा है कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए आप तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, और विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुनने के लिए बैठे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से दानियल नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि पिछले अध्ययन में हमने देखा कि दानियल ने स्वप्न देखे जिसमें चार पशुओं के बारे में उसने वर्णन किया है। चार साम्राज्य अर्थात राष्ट्र के बारे में बातें करती है। हम इसे देख रहे थे कि हर एक जंतु अलग अलग राज्य को प्रदर्शित कर रहा था, यानी कि प्रतीक के रूप में दर्शाए गए थे। तो मित्रों, आज हम उसके बारे में और अधिक आगे अध्ययन करेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगे, ताकि जब हम परमेश्वर के वचन में से सीखें तो परमेश्वर का वचन हमारे हृदयों में कार्य करने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी और अत्यंत दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम आपके वचन का अध्ययन कर सकें। पिताजी, हम जानते हैं कि आपका वचन सच्चा है जो हमारे हृदयों से बोलता और बातचीत करता है। आज हम विनती करते हैं कि हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों से आप बातचीत करें, उनके हृदय की आत्मिक आँखों को, उनके विचारों को आप खोल दें, उन्हें एकाग्रतापन दें, ताकि आपके वचन के उस गंभीरता को समझ सकें। इतना ही नहीं, हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए भी है जो इस समय बीमार अवस्था में है, आपके वचन को सुनने के लिए बैठे हैं। आप उन पर कृपा दृष्टि करें, उन्हें छुए और उन्हें भी चंगाई प्रदान करें, क्योंकि हम जानते हैं कि आप सामर्थी परमेश्वर हैं, आप दानियल के परमेश्वर हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आज के अध्ययन पर भी अपनी आशीष दे, हम सब के साथ हो। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आइए आप मेरे साथ दानियल नबी की पुस्तक उसके 7 अध्याय को निकाल लीजिए। दानियल नबी की पुस्तक 7 अध्याय उसके 8 पद में लिखा हुआ है, मैं उन सींगों को ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा कि उनके बीच एक छोटा और छोटा सा सींग निकला और उसके बल से उन पहले सींगों में से 3 उखाड़े गए। फिर मैंने देखा कि इस सिंह में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोल बोलने वाला मुंह भी है। मेरे प्रियो, अब हमारा ध्यान दर्शन के 4वें प्राणी के 10 सिंह पर केंद्रित किया जा रहा है। यहां एक बात का ध्यान रखिए कि इस दर्शन में 5वां राष्ट्र नहीं है। ये सिंह 4वें प्राणी के सिर से उगे थे और उसके विकास का अंतिम चरण है। राजा नबूकदनेस्सर के स्वप्न की मूर्ति में वे लोहे और मिट्टी की उंगलियां थे। रोम तो आज भी है और उसकी दुर्बलताएं मिट्टी हैं जो आज भी है। मेरे विचार में लोहे का अर्थ है तानाशाह और मिट्टी जनता अर्थात प्रजातंत्र को दर्शाती है। निसंदेह हम प्रजातंत्र में इसी प्रकार की दुर्बलता को देखते हैं। हमें अपनी स्वतंत्रता पर गर्व है और मैं परमेश्वर का भी धन्यवाद करता हूँ, परंतु जनता का महत्व एक उपहास बन गया है। सच तो यह है कि आपका और मेरा कोई भी महत्व नहीं है। चुनाव के समय तो राजनेता कहते हैं कि हम महत्वपूर्ण हैं। वे हमारे घरों में आते हैं, हमें कहते हैं कि हम शिक्षित लोग हैं, परंतु जब सरकार बन जाती है, सरकार की बात आती है, तब हमारी कोई भी नहीं सुनता है। निर्णय तो नेताओं के ही हाथों में होता है। आज हमारे शहरों में गंदगियां, गांव में सड़क नहीं है, और इस प्रकार से आप देखें तो कहीं पर भूखमरी है, कहीं पर बिजली की बत्तियां नहीं है, और इस प्रकार से हम चारों तरफ समस्याओं को देखते हैं, लेकिन उसको सुनने वाला कोई नहीं होता है। मेरे मित्रों, स्वतंत्रता के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, परंतु यह सच है कि हमें उनकी ही इच्छा को स्वीकार करना पड़ता है। परमेश्वर की आदर्श सरकार प्रजातंत्र की नहीं है, वह अधिनायक तंत्र है। जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर राज करेगा तब वह किसी से मार्गदर्शन नहीं खोजेगा या मांगेगा, निर्णय उसके ही होंगे। वह अपने ही निर्णय को हम पर प्रकट करेगा और पृथ्वी उसकी इच्छा के अधीन रहेगी। यही कारण है कि यदि हम उसके स्वरूप में ढल जाएं तो अच्छा होगा, अन्यथा उसके राज्य में हमें बहुत अधिक असुविधा होगी। वह प्रत्येक गलती करने वाले और विद्रोही को देश निकाला दे देगा। हमें उसे और उसके स्वेच्छाधारी राज्य के अधीन रहना होगा। मेरे मित्रों, रोमी साम्राज्य के पतन का कारण था आंतरिक भ्रष्टाचार और शराब का नशा। ये चारों साम्राज्य शराब के नशे के कारण नष्ट हुए थे। हमारे देश में नशीली पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध है, परंतु शराब का व्यवसाय वैधानिक है। कौन किसे बहका रहा है? आज असंख्य शराबी नौकरियां करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु इसमें गृहिणियां और बच्चों की गिनती नहीं है। यह तो उस समय सामने आता है जिस समय वे आत्महत्या करते हैं, और बच गए तो मानसिक अस्पतालों में उन्हें जाना पड़ता है। आज हमारे युवा वर्ग अपने अध्ययन को छोड़कर नशे के आदि होते जा रहे हैं। बहुत सारे परिवार टूटते जा रहे हैं, बहुत सारे माताएं विधवा बनते जा रही हैं। मेरे प्रियो, यदि आप परिवार को देखेंगे तो आप पाएंगे कि नशे ने परिवार को नष्ट कर दिया है, और यही बात हम यहां पर भी देख रहे हैं। रोम का पुनर्गठन होगा, वे किसी ऐसे नेता की प्रतीक्षा में हैं जो इस काम को करे। जर्मनी के इतिहासकार हाफमैन ने कहा था, जब जर्मन के लोग और स्लाववासी रोम में आए तब उनके राजकुमारों ने रोमी परिवारों में विवाह किया। चार्लमन रोमी परिवार का था और लगभग उसी समय जर्मनी का राजा ऑथो द्वितीय और रूस के राजकुमार व्लादिमीर ने पूर्वी रोमी साम्राज्य के राजा की अपनी पुत्रियों से विवाह किया था। रोम में अप्रवास करने वाली जातियों का यही स्वभाव था। उन्होंने नए राज्य की स्थापना तो नहीं की, परंतु रोम का भाग बन गया। इस प्रकार यह क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक सांसारिक राज्य अंततः 10 राज्यों में विभाजित न हो जाए। इन्हें आज नाम देने का प्रयास करना वैसा ही कठिन कार्य है जैसा प्रभु यीशु के पुनः आगमन की तिथि गलत निर्धारित करना। हम पढ़ते हैं कि एक और छोटा सा सिंह, यह संपूर्ण दृश्य में मुख्य है। वह 3 सिंहों को उखाड़कर स्वयं को उन पर स्थापित करेगा। मेरे प्रियो, मैं यह तो नहीं जानता कि ये 10 सिंह कौन कौन से देश हैं, परंतु वे रोमी साम्राज्य के विभाजन से उत्पन्न हुए हैं। सिंह में मनुष्य की सी आंखें, अर्थात मानवीय बुद्धि और प्रवीणता। तब हम पढ़ते हैं बड़ा बोल बोलने वाला मुंह, अर्थात निंदा करने वाला मनुष्य। ये सारी बातें दर्शन की बातें हैं जिसे दानियल हमें बता रहा है। आगे हम देख रहे हैं कि मनुष्य के पुत्र का बादलों में आगमन, जिसके दर्शन को दानियल हमें बताता है। दानियल की पुस्तक 7 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिम सा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए धधकती हुई आग के से दिखाई पड़ते थे। मेरे मित्रों, अब दृश्य बदलकर स्वर्ग का दृश्य है और परमेश्वर का सिंहासन दिखाई देता है। यही दृश्य प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 4 और 5 में प्रकट है। यह महाक्लेश के दंड की और प्रभु यीशु के आगमन की तैयारी है। लिखा है सिंहासन रखे गए। यह प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 4 अध्याय के 4 पद के समतुल्य है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में यूहन्ना प्राचीनों की संख्या और अन्य जानकारियां भी देता है। दानियल इन बातों से अनभिज्ञ था, अतः वह कलीसिया और उसके भविष्य की चर्चा नहीं कर पाया था। तब हम पढ़ते हैं अति प्राचीन अर्थात अनादि परमेश्वर, उसका वस्त्र हिमसा उजला। जी हां, परमेश्वर के पवित्रता और धार्मिकता की आभा। आगे लिखता है सिर के बाल निर्मल ऊन, अर्थात परमेश्वर का सर्वज्ञान। तब हम आगे पढ़ते हैं सिंहासन अग्निमय, परमेश्वर का यह दंड है। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक 4 अध्याय उसके 5 पद में हम इसे देखते हैं। तब आगे लिखा है पहिए धधकती हुई आग, परमेश्वर की निर्विरोध क्षमता और सक्रिय सामर्थ का प्रतीक है। इसे यहेजकेल नबी की पुस्तक 1 अध्याय उसके 13 से 21 पद में हम पाते हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ें और पढ़ें दानियल नबी की पुस्तक 7 अध्याय उसके 10 पद को। लिखा है उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी, फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। मेरे मित्रों, यह प्रभु राज के बाद का महान श्वेत सिंहासन नहीं है। यह महाक्लेश और प्रभु यीशु के आगमन की तैयारी के विषय में है, जब वह अपना राज्य स्थापित करने पुनः पृथ्वी पर आएगा। इसे हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 5 अध्याय उसके 11 से 14 पद में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आगे हम पढ़ते हैं दानियल 7 उसके 11 पद में लिखा है उस समय उस सिंह का बड़ा बोल सुनकर मैं देखता रहा और देखते देखते अंत में देखा कि वह जंतु घात किया गया और उसका शरीर धधकती हुई आग से भस्म किया गया। जिस समय परमेश्वर स्वर्ग में न्याय का दृश्य उत्पन्न कर रहा है, उसी समय वह छोटा सिंह बड़ी बड़ी बातें कर रहा होगा। इसे हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 13 अध्याय उसके 5 और 6 पद में पढ़ते हैं। तथापि उसका न्याय हो चुका होगा और राज्य नष्ट होगा। यहां अंतिम प्राणी द्वारा दर्शाए गए राज्य के उदय होने पर नहीं, उसके अंत होने पर ध्यान केंद्रित करवाया गया है। इस छोटे से सिंह को उभरने का समय न्याय हेतु प्रभु के आगमन से कुछ समय पूर्व का ही है। मेरे प्रियो, हम आगे देखते हैं कि यह समय महाक्लेश का समय होगा, अर्थात महासताव का समय होगा। दानियल की पुस्तक 7 अध्याय के 12 पद में लिखा है, शेष जंतुओं का अधिकार ले लिया गया परंतु उनका प्राण कुछ समय के लिए बचाया गया। ये तीन राज्य तो विलोप हो गए, परंतु उन राज्यों के विचार और दर्शन शास्त्र समाप्त नहीं हुआ है और वह महाक्लेश में अर्थात महासताव के समय में प्रकट होगा। दानियल के पुस्तक 7 अध्याय के 13 पद में आगे लिखा है, मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं कि स्वर्ग में परमेश्वर के पुत्र को अधिकार दिया गया कि वह अन्य जातियों से राज्य लेकर अपना राज्य स्थापित करे। प्रभु यीशु को जब महासभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, तब यीशु ने इसी पद का संदर्भ दिया था जिसे हम मरकुस रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 61 और 62 पद में पढ़ते हैं। महायाजक ने उससे फिर पूछा, क्या तू तो उस परम धन्य का पुत्र मसीह है? यीशु ने कहा, मैं हूं। और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते हुए देखोगे। तब हम लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 32 पद में देखते हैं। जी हाँ, हम यीशु के बारे में स्वर्गदूत की भविष्यवाणी को देखते हैं। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। अतः यहाँ स्पष्ट है कि प्रभु यीशु मसीह ही वह बिना हाथों के काटा हुआ पत्थर है जिसने उस प्रतिमा को, उस मूर्ति को चूर चूर कर दिया था। वह इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करेगा। भजन संहिता 2 उसके 7 में हम पढ़ते हैं, मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। मेरे प्रियो, वह मृतकों में से फिर से जी उठा, या उसके जन्म के विषय नहीं, पुनरुत्थान द्वारा पुत्र होने की चर्चा है। हम प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसके 33 पद में हम पढ़ते हैं, पौलुस इसी पद का संदर्भ देता है, परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारी संतान के लिए पूरी की, जैसा दूसरे भजन में भी लिखा है, तू मेरा पुत्र है, आज मैंने ही तुझे जन्माया है। मेरे मित्रों, भजनकार ने अगले पदों में यह भी कहा है, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। भजन संहिता 2 अध्याय के 8 पद में हम इसे पाते हैं। प्रभु यीशु राज्य अपने हाथ में ले लेगा। वह कैसे करेगा? भजन संहिता 2 अध्याय के 9 में लिखा है, तू उन्हें लोहे के दंड से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। जी हाँ, जब वह पृथ्वी पर आएगा तब ऐसा नहीं है कि उसका राज्य उसकी प्रतीक्षा में होगा। वह विद्रोहियों को नष्ट करके आज्ञाकारी मनुष्यों को अपने राज्य में ले लेगा। हम आगे पढ़ेंगे दानियल के पुस्तक 7:14 में लिखा हुआ है, तब उसको ऐसी प्रभुता महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। मेरे प्रियो, इस पद में प्रभु यीशु के आगमन और बिना हाथों के काटे हुए पत्थर द्वारा मूरत को चकनाचूर करने की तैयारी है। आप देखिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 19:11-16 में, उसकी प्रभुता सदा तक अटल। यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि यह पद अंश प्रभु राज के विपरीत है, तथापि प्रभु राज में 1000 वर्ष बाद न्याय का समय होगा, जब शैतान को कुछ समय के लिए मुक्त कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, और उस समय थोड़े समय के लिए विद्रोह होगा। तदुपरांत प्रभु राज्य सदा काल के लिए बना रहेगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20:6 में लिखा है, धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है, ऐसों पर दूसरे मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर के और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। जी हाँ, प्रभु राज्य के 1000 वर्ष उसके अनंत राज्य का मात्र एक ही चरण है, जिसके चरण प्रकाशित वाक्य के पुस्तक 20:1 में दिए गए हैं। प्रभु यीशु इसी पृथ्वी पर स्वर्गिक शर्तों पर राज्य करेगा। इसके बाद शैतान को मुक्त किया जाएगा। वे जिनका मन परिवर्तन नहीं हुआ है, उन्हें संगठित करके शैतान फिर से विद्रोह करेगा। तब शैतान और उसके साथी आग की झील में डाल दिए जाएंगे। उस समय मोक्ष रहित मृतक जिलाए जाएंगे और श्वेत सिंहासन के सामने उसका न्याय होगा। यह सब हो जाने के बाद अनंत राज्य प्रकट होगा, जिसे हम पद 27 में पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट करता है कि इस राज्य का स्थान पृथ्वी पर है। मीका की पुस्तक 4:2 में हम पढ़ते हैं, और बहुत सी जातियों के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था सियोन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। जी हाँ, जब परमेश्वर का राज्य होगा तो वहां पर सिर्फ शांति ही होगी, और जो प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे वही उसके राज्य में होंगे, और जो उस पर विश्वास नहीं करेंगे वे आग की झील में डाले जाएंगे। मेरे प्रियो, आज हम सबके लिए एक सुंदर अवसर है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अपने मन को फिराएं, ताकि हम भी परमेश्वर के उस अनंतकालीन राज्य में प्रवेश कर सकें, अन्यथा हम आग की झील अर्थात नरक में डाले जाएंगे। और मैं आशा करूंगा कि आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप नरक में डाले जाएं। तो मेरे मित्रों, आइए आज हम प्रभु यीशु के पास आए, अपने जीवन को जांचें और उससे अपने जीवन में आने दें, और कहें, प्रभु मैं आपके राज्य में रहना चाहता हूं, आप मेरी सहायता करें। जब आप प्रभु के निकटता में आएंगे तो निश्चय ही वह आप पर अनुग्रह करेगा। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। जैसा कि हम इन दिनों दर्शन के बारे में देख रहे हैं, पशु के बारे में देख रहे हैं, और इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें सिखा रहा है, ताकि हम उसके राज्य की बातों को जान लें जो आने वाले समय में पूरी होने वाली है। तो आइए आज हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें। मेरे प्रियो, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, और मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। श्रोता, हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के द्वारा आपको परमेश्वर के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त हुई होगी। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल आपके लिए उपलब्ध है। यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप हमें इस नंबर पर SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 09651433397। एक बार फिर से नोट कर लें, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
दिखती है मुझे पहाड़ पर।